एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। ये कोई किताब नहीं है, सच पूछिए तो ये एक पत्र है।
जी
लेकिन ऐसा वैसा पत्र नहीं, ये लिखा गया था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अप्रैल 1963 में बर्मिंघम एलाबामा की एक जेल की कोठरी से।
हाँ, लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल।
बिल्कुल, और इस एक पत्र ने अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन पर और सच कहें तो दुनिया भर के मानवाधिकार संघर्षों पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
यकीनन, और इसकी पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। ये पत्र दरअसल 8 श्वेत पादरियों के एक बयान के जवाब में था।
अच्छा,
हाँ, उन पादरियों ने डॉक्टर किंग के नेतृत्व में बर्मिंघम में जो अहिंसक प्रदर्शन चल रहे थे उनकी आलोचना की थी। कहा था कि ये प्रदर्शन अनुचित हैं और सही समय पर नहीं हो रहे।
और किंग उस वक्त अमेरिका में नस्ली बराबरी के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े नामों में से एक थे।
बिल्कुल, और वो अहिंसक सविनय अवज्ञा, मतलब नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के बहुत बड़े पैरोकार थे।
तो अब सवाल ये उठता है कि आज, मतलब 1963 से इतने साल बाद, 60 साल से भी ज्यादा हो गए,
जी
ये पत्र इतना जरूरी क्यों है? हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं?
देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ उन 8 पादरियों को दिया गया एक जवाब भर नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। ये अन्याय, नैतिकता, कानून, समाज को बदलने की रणनीतियां, इन सब पर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक किस्म का चिंतन बन गया। और ये आज भी हमें सिखाता है कि अन्याय का सामना कैसे करें, कब कानून मानना सही है और कब उसका विरोध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है।
सही बात है, इसकी प्रासंगिकता तो आज भी उतनी ही लगती है, शायद ज्यादा भी।
बिल्कुल, दुनिया भर में जहां भी न्याय के लिए आवाज उठती है, कहीं ना कहीं इस पत्र की गूंज सुनाई देती है।
तो चलिए इस पत्र में जो तर्क दिए गए हैं उनकी यात्रा को थोड़ा समझते हैं। किंग ने शुरुआत कैसे की, खासकर जब उन पे यह आरोप था कि वो बाहरी हैं, बर्मिंघम के नहीं हैं।
हाँ, ये पहला बड़ा आरोप था। उन्होंने शुरुआत बहुत सम्मान से की, उन पादरियों को सद्भावना रखने वाले साथी पादरी कहा, फिर वो सीधे इस बाहरी आंदोलनकारी वाले आरोप पर आए।
उन्होंने बताया कि देखिए, मैं दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन यानी SCLC का अध्यक्ष हूँ और मुझे यहाँ बर्मिंघम में मेरे ही स्थानीय साथियों ने, जो SCLC के सदस्य हैं, मदद के लिए बुलाया है।
अच्छा, तो तकनीकी तौर पर वो बाहरी नहीं थे?
नहीं थे, लेकिन उनका तर्क सिर्फ इतना ही नहीं था, वो इससे कहीं गहरे गए।
हाँ, वही मैं सोच रहा था।
यहीं पर वो उस विचार को सामने लाते हैं जो इस पत्र की जान है। वो कहते हैं, कहीं भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा है।
इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये तो बहुत मशहूर पंक्ति है। ताकि भाई, ये मेरी समस्या नहीं है।
इसने तो पूरे मुद्दे का कैनवस ही बदल दिया,
हाँ,
स्थानीय से एकदम सार्वभौमिक बना दिया।
बिल्कुल, यहीं से उन्होंने नैतिक आधार तैयार कर दिया अपने वहां होने का और विरोध करने का।
अच्छा, इस मजबूत नैतिक आधार के बाद वो फिर उन विरोध प्रदर्शनों पर आते हैं जिन्हें अनुचित और असामयिक कहा जा रहा था, उन्हें कैसे सही ठहराया?
हाँ, यहाँ वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ये जो सीधी कार्रवाई थी, ये डायरेक्ट एक्शन, ये कोई पहला कदम नहीं था, ये आखिरी रास्ता था।
आखिरी रास्ता, मतलब पहले और भी कोशिशें हुई थी।
जी हाँ, वो अहिंसक अभियान के 4 बुनियादी चरण बताते हैं। पहला, तथ्यों का संग्रह, यानी पहले ये पता करो कि क्या वाकई अन्याय हो रहा है।
और बर्मिंघम में,
बर्मिंघम में तो नस्लीय भेदभाव के ढेरों सबूत थे। किंग गिनाते हैं कैसे अदालतों में नाइंसाफी होती थी, कैसे काले लोगों के घरों और चर्चों पर बम फेंके जाते थे और पुलिस कुछ नहीं करती थी, पुलिस की क्रूरता, मतलब तथ्य बिल्कुल साफ थे।
ठीक है, पहला स्टेप हो गया, फिर
दूसरा, बातचीत। क्या बातचीत से इसे सुलझाने की कोशिश हुई? किंग बताते हैं कि हाँ, हुई। नागरिक अधिकार नेताओं ने शहर के जो श्वेत व्यापारी थे उनके साथ बैठकें की।
अच्छा,
कुछ वादे भी हुए, जैसे दुकानों से वो अपमानजनक नस्ली निशान हटा दिए जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, वादे तोड़ दिए गए।
मतलब बातचीत फेल हो गई।
बिल्कुल, बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। इसीलिए तीसरा चरण आया, आत्मशुद्धि।
आत्मशुद्धि, ये क्या था?
ये एक तरह की नैतिक और मानसिक तैयारी थी, प्रदर्शन करने वालों को तैयार करना कि क्या वो बिना बदले की भावना के हिंसा सहने को तैयार हैं, क्या वो जेल जाने को तैयार हैं। धरना, प्रदर्शन, मार्च, और किंग यहां जोर देकर कहते हैं कि इसका मकसद हिंसा फैलाना नहीं था,
बल्कि
बल्कि एक ऐसा रचनात्मक तनाव पैदा करना था, एक क्रिएटिव टेंशन जो उस समुदाय को, उस शहर को मजबूर कर दे कि वो उन मुद्दों का सामना करें जिन्हें वो लगातार टलता आ रहा है। उनका मानना था कि ये तनाव ही बातचीत के नए दरवाजे खोल सकता है।
अच्छा, और यहीं पर वो बात आती है जो आलोचक कह रहे थे कि अभी सही समय नहीं है, इंतजार करो। इस पर किंग का जवाब क्या था?
हाँ, और ये शायद इस पत्र का सबसे ज्यादा भावनात्मक और ताकतवर हिस्सा है। किंग बहुत पीड़ा के साथ कहते हैं कि जो लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं उनके लिए इंतजार शब्द का मतलब लगभग हमेशा कभी नहीं होता है।
जस्टिस टू लॉन्ग डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
बिल्कुल वही, न्याय में देरी न्याय से इनकार है। और फिर वो बहुत ही मार्मिक शब्दों में बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में अश्वेत लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता था।
जैसे?
जैसे लिंचिंग का लगातार बना रहने वाला डर, पुलिस की बर्बरता का सामना करना, अपने छोटे बच्चों को कैसे समझाएं कि वो पब्लिक अम्यूजमेंट पार्क क्यों नहीं जा सकते क्योंकि उनका रंग अलग है, या जब आपकी बेटी पूछे कि गोरे लोग काले लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, या जब आपको निगर या बॉय जैसे अपमानजनक नामों से पुकारा जाए चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो।
ये पढ़ते हुए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हाँ, और फिर वो पूछते हैं कि ये सब झेलने के बाद आप हमसे कब तक इंतजार करने को कहेंगे। ये कोई अधीरता नहीं थी, ये सदियों से जमा हुआ दर्द और अपमान था जो अब फूट पड़ा था।
ये तो समझ आता है कि विरोध क्यों जरूरी था और इंतजार करना क्यों नामुमकिन था। लेकिन अगला बड़ा सवाल आता है कानून तोड़ने का। किंग इसे कैसे सही ठहराते हैं? ये तो हमेशा ही एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है
और किंग इस चुनौती का सीधे सामना करते हैं। ये पत्र का दार्शनिक शिखर है, कह सकते हैं। वो सेंट ऑगस्टिन को कोट करते हैं, एक अन्यायपूर्ण कानून कोई कानून नहीं है।
An unjust law is no law at all.
हाँ, लेकिन वो इसे बस कहकर छोड़ नहीं देते। वो बाकायदा मानदंड तय करते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सा कानून न्यायपूर्ण है और कौन सा अन्यायपूर्ण।
अच्छा, ये जानना तो बहुत जरूरी है। क्या थे वो मानदंड?
उन्होंने कई बातें कही। पहली कि एक न्यायपूर्ण कानून वो है जो नैतिक कानून या ईश्वर के कानून के मुताबिक हो, जो इंसान की गरिमा को, उसके व्यक्तित्व को ऊपर उठाए।
ठीक है।
और अन्यायपूर्ण कानून वो है जो नैतिक कानून के खिलाफ जाए, जो इंसान के व्यक्तित्व को कम करे, उसे विकृत करें। किंग कहते हैं कि सेग्रीगेशन यानी पृथककरण के सारे कानून अन्यायपूर्ण हैं।
क्यों?
क्योंकि वो लोगों को अलग करते हैं, और ऐसा करके वो अलग करने वालों में झूठी श्रेष्ठता की भावना और जिनका अलगाव हो रहा है उनमें झूठी हीनता की भावना पैदा करते हैं। ये इंसानियत को बांटता है।
ये तो बहुत गहरा तर्क है। और कोई मानदंड?
हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कानून ऐसा है जिसे बहुमत अल्पत पर थोपता तो है लेकिन खुद उस कानून को मानने को तैयार नहीं है तो वो अन्यायपूर्ण है।
मतलब कानून सबके लिए बराबर वाला सिद्धांत टूट गया।
बिल्कुल। और एक और बात, अगर कोई कानून किसी अल्पत पर थोपा गया है जिसे उस कानून को बनाने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होने दिया गया, मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं था, तो वो कानून भी अन्यायपूर्ण है।
ये तो बहुत ही स्पष्ट और तार्किक बातें हैं।
हाँ, और सबसे जरूरी बात किंग ने ये कही कि जब आप किसी अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ते हैं तो भी आपको कानून के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान दिखाना चाहिए।
वो कैसे? कानून तोड़कर सम्मान कैसे?
ऐसे कि आप उसे खुले तौर पर तोड़ें, चुपके से नहीं, प्रेम पूर्वक तोड़े, नफरत से नहीं, और सबसे जरूरी, उसकी जो सजा है उसे भुगतने के लिए तैयार रहें।
अच्छा,
ये अराजकता नहीं है। किंग के अनुसार ये कानून के प्रति उच्चतम सम्मान है क्योंकि अब कानून के मूल सिद्धांत यानी न्याय के लिए सजा भुगतने को तैयार हैं।
ये तो सविनय अवज्ञा को एक बहुत ऊंचा नैतिक आधार देता है। अद्भुत। लेकिन किंग यहीं नहीं रुके, उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जिन्हें शायद सहयोगी माना जाता था।
हाँ, और ये शायद पत्र का सबसे ज्यादा कह सकते हैं विवादास्पद लेकिन सबसे साहसी हिस्सा है, उनकी श्वेत उदारवादियों यानी व्हाइट मॉडरेट्स की तीखी आलोचना।
व्हाइट मॉडरेट्स? मतलब वो लोग जो नस्लवाद के खिलाफ थे लेकिन किंग के तरीकों से सहमत नहीं थे।
बिल्कुल। किंग कहते हैं कि मुझे कु क्लक्स क्लान जैसे कट्टर नफरत करने वालों से उतनी निराशा नहीं हुई जितनी इन सफेद उदारवादियों से हुई है।
ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। क्यों?
उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि ये वो लोग हैं जो व्यवस्था को न्याय से ज्यादा महत्व देते हैं। ये लक्ष्य से तो सहमत दिखते हैं, हाँ हाँ हम भी बराबरी चाहते हैं, लेकिन तरीकों का विरोध करते हैं। अरे भाई, आपके प्रदर्शनों से अशांति फैलती है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो।
ऑर्डर बनाम जस्टिस।
हाँ, किंग कहते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि वो किसी और की आजादी का टाइम टेबल तय कर सकते हैं। ये जो सतही समझ है, ये जो निष्क्रियता है
और ये जो नकारात्मक शांति बनाए रखने की इच्छा है।
नकारात्मक शांति
मतलब ऐसी शांति जहां बस ऊपर से तनाव न दिखे, भले ही अंदर अन्याय खोलता रहे। किंग कहते हैं कि ये नकारात्मक शांति सकारात्मक शांति यानी जहां न्याय मौजूद हो उसकी राह में ज्यादा बड़ी रुकावट है बजाय के खुले विरोध के।
मतलब जो लोग बीच में खड़े हैं, जो चुप हैं, वो असल में अन्याय को बने रहने में मदद कर रहे हैं।
उनका यही कहना था। ये निष्क्रिय सहमति, ये ल्यूक वॉर्म एक्सेप्टेंस, कट्टर विरोध से ज्यादा निराशाजनक है।
वाह, ये तो बहुत ही बेबाक आलोचना थी। किंग खुद एक पादरी थे, चर्च के बारे में उन्होंने क्या कहा? क्या चर्च उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा?
नहीं, और इस बात का दर्द उनके पत्र में साफ झलकता है। वो श्वेत चर्च और उसके नेताओं की चुप्पी और कई बार तो यथास्थिति के समर्थन पर गहरी निराशा जताते हैं।
उन्हें उम्मीद थी कि चर्च साथ देगा।
हाँ, उन्हें उम्मीद थी कि खासकर दक्षिण के चर्च अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएंगे, लेकिन ज्यादातर या तो चुप रहे या फिर प्रदर्शनों को ही गलत ठहराने लगे। वो याद दिलाते हैं कि इतिहास में शुरुआती ईसाई चर्च समाज को चुनौती देने वाली एक ताकतवर नैतिक शक्ति थी, लेकिन अब का चर्च, वो कहते हैं, अक्सर बस यथास्थिति का समर्थक बन गया है या महज एक अप्रासंगिक सामाजिक क्लब जैसा।
उन्होंने चर्च के लिए कोई रूपक इस्तेमाल किया था?
हाँ, बहुत मशहूर। उन्होंने कहा कि चर्च को समाज का थर्मोस्टैट होना चाहिए जो नैतिक तापमान को सेट करे, उसे बदले, लेकिन वो अक्सर सिर्फ एक थर्मामीटर बनकर रह गया है जो बस जनमत के तापमान को दिखाता है।
थर्मोस्टेट बनाम थर्मामीटर, बहुत खूब। और अंत में वो जो लेबल उन पर लगाया जा रहा था, चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, उसका जवाब उन्होंने कैसे दिया?
ये भी बहुत दिलचस्प है। बजाय इसके कि वो इस लेबल को नकारें या उससे बचाव करें, वो इसे गले लगाते हैं और फिर उसे एक नई परिभाषा देते हैं।
अच्छा, कैसे?
वो सवाल पूछते हैं, क्या ईसा मसीह प्रेम के लिए चरमपंथी नहीं थे? क्या पैगंबर आमोस न्याय के लिए चरमपंथी नहीं थे? क्या सेंट पॉल ईसा के संदेश को फैलाने के लिए चरमपंथी नहीं थे? फिर वो अमरीकी इतिहास से उदाहरण देते हैं। क्या थॉमस जेफरसन चरमपंथी नहीं थे जब उन्होंने लिखा कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं? क्या अब्राहम लिंकन चरमपंथी नहीं थे जब उन्होंने कहा जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार?
अरे वाह, उन्होंने तो पूरे लेबल को ही पलट दिया।
बिल्कुल। वो कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि हम चरमपंथी होंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम किस तरह के चरमपंथी होंगे।
क्या बात है।
क्या हम नफरत के लिए चरमपंथी होंगे या प्रेम के लिए, अन्याय को बचाने के लिए या न्याय को फैलाने के लिए? इस तरह वो आलोचना को ही एक नैतिक चुनाव में बदल देते हैं। हर किसी को सोचना पड़ता है कि वो किस तरफ का चरमपंथी बनना चाहता है।
इस पूरी चर्चा से, इस पत्र के तर्कों से, डॉक्टर किंग का जो मूल दर्शन है, जो उनके जीवन मूल्य थे, वो क्या उभर कर सामने आते हैं? क्या चीज थी जो उन्हें चला रही थी?
देखिए, कई चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। पहला तो अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध। ये उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये एक गहरी नैतिक अनिवार्यता थी, इंटेग्रिटी का सवाल था।
हाँ।
दूसरा, न्याय की सार्वभौमिकता और उसका आपस में जुड़ा होना। वो जो उन्होंने कहा कहीं का अन्याय हर जगह के लिए खतरा, ये विचार उनके दर्शन का केंद्र है। हम सब जुड़े हुए हैं।
सही।
तीसरा,
तत्काल कार्रवाई की जरूरत। न्याय के लिए सही समय का इंतजार करना या करवाते रहना अपने आप में एक अन्याय है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला सिद्धांत।
चौथा, निष्क्रियता का खतरा, खासकर उन लोगों की निष्क्रियता जो सैद्धांतिक रूप से तो सहमत हैं पर कुछ करते नहीं।
वो वाइट मॉडरेट वाली बात।
ये उदारवादी जटिलता अन्याय को कायम रखती है।
और आखिरी
और अंत में, प्रेम और न्याय के लिए चरमपंथी होने का साहस। ये मानना कि सच्चा बदलाव आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं आता, उसके लिए नैतिक दृढ़ता चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो बलिदान भी देना पड़ता है।
बहुत गहरी बातें हैं। अच्छा, अगर हम इस पत्र के तर्कों में या इसके असर में तीन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ या टर्निंग पॉइंट्स की पहचान करें जहां आपको लगता है कि बहस ने एक बिल्कुल नई शक्तिशाली दिशा ले ली, तो वो क्या होंगे?
ये अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से पहला टर्निंग पॉइंट तो बिल्कुल शुरुआत में ही था, जब किंग ने बाहरी आंदोलनकारी के आरोप का जवाब देते हुए उसे अन्याय कहीं भी, न्याय के लिए हर जगह खतरा है के सिद्धांत से जोड़ दिया।
हाँ, ये तो था।
इसने उनके संघर्ष को सिर्फ बर्मिंघम का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल मॉरल लड़ाई बना दिया। इसने नैतिक जमीन ही बदल दी बहस की।
बिल्कुल। दूसरा मोड़ कौन सा मानेंगे?
दूसरा मेरे विचार में वो था जब उन्होंने न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण कानूनों के बीच वो स्पष्ट दार्शनिक अंतर पेश किया।
हाँ, वो मानदंड वाला हिस्सा।
जी, इसने सविनय अवज्ञा को एक जबरदस्त नैतिक और बौद्धिक आधार दिया। ये अब सिर्फ कानून तोड़ना नहीं रह गया था, ये एक उच्च नैतिक कर्तव्य बन गया था जो कानून के गहरे सम्मान से निकला था। इसने आलोचकों के एक बड़े तर्क की हवा निकाल दी।
सही कहा। और तीसरा?
तीसरा मुझे लगता है श्वेत उदारवादियों की वो तीखी बेबाक आलोचना थी।
अच्छा, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण था?
वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। ये उन लोगों को चुनौती दे रहा था जिन्हें पारंपरिक रूप से सहयोगी माना जाता था। लेकिन ऐसा करके किंग ने एक बहुत कड़वा सच उजागर कर दिया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में तटस्थ रहने या निष्क्रिय रहने का कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ अच्छी मंशा रखना काफी नहीं है, आपको सक्रिय रूप से न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा, जोखिम उठाना होगा। इसने निष्क्रियता की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुझे लगता है ये तीन मोड़ बहुत अहम थे।
मैं सहमत हूँ, ये वाकई निर्णायक मोड़ थे। अब इन तर्कों और मोड़ों से आज का जो श्रोता है वो क्या मानवीय सबक ले सकता है? ये सिर्फ इतिहास की बात तो नहीं है?
बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा सबक तो व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी का है। किंग हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम चुपचाप किनारे खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते,
दर्शक बने नहीं रह सकते।
हाँ, जब हम अन्याय देखते हैं तो चुप रहना भी एक तरह से अन्याय का साथ देना ही है। उनकी वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, अंत में हमें दुश्मनों के शब्द नहीं बल्कि दोस्तों की चुप्पी याद रहेगी।
और पत्र में भी उन्होंने कहा, अच्छे लोगों की भयावह चुप्पी।
हाँ, अपॉलिंग साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। ये बुरे लोगों के बुरे कामों जितनी खतरनाक हो सकती है। ये पहला सबक है, बोलने और एक्शन लेने की जिम्मेदारी।
ये तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया।
निश्चित रूप से। दूसरा सबक मुझे लगता है धैर्य और तात्कालिकता के बीच सही संतुलन खोजने का है। किंग न्याय के लिए तुरंत एक्शन पर जोर देते हैं, पर उनका तरीका अहिंसा, बहुत ज्यादा अनुशासन, रणनीतिक धैर्य और आत्मनियंत्रण मांगता है।
हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है।
लगता है पर है नहीं। बदलाव एक प्रक्रिया है, वो रातों रात नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अन्याय को अनिश्चित काल तक बर्दाश्त करें। तो तात्कालिकता भी जरूरी है और धैर्य भी।
और तीसरा मानवीय सबक?
तीसरा है न्याय के लिए अपने आराम, अपनी सुविधा को छोड़ने का साहस। किंग ये पत्र जेल से लिख रहे थे। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि जिन मूल्यों पर आप यकीन करते हैं उनके लिए खड़े होने में कीमत चुकानी पड़ती है। त्याग करना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने सिद्धांतों के लिए कितनी असुविधा झेलने को तैयार हैं।
तो इस पूरी गहन चर्चा के अंत में अगर हमें तीन मुख्य बातें श्रोताओं के लिए सूत्र रूप में कहनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक या व्यावहारिक सीख, तो वो क्या होंगी?
ठीक है, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। मेरे लिए सबसे गहरी भावनात्मक सीख ये है कि जो लोग पीड़ा में हैं, उत्पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को कम समझना या उनसे कहना कि थोड़ा और इंतजार कर लो, ये कितना अमानवीय है। किंग का पत्र हमें गहरी सहानुभूति सिखाता है, और सिर्फ महसूस करने वाली नहीं बल्कि एक्शन लेने वाली सहानुभूति। दूसरों के दर्द को समझना काफी नहीं है, उसे दूर करने के लिए कुछ करना जरूरी है।
बहुत सही, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। सबसे जरूरी बौद्धिक सीख मेरे ख्याल से न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण कानूनों के बीच का वो फर्क है, और ये समझना कि कानून मानना हमेशा नैतिकता का सबूत नहीं होता। हमारी अपनी नैतिक चेतना, हमारा विवेक ज्यादा ऊंचा है, और जब सविनय अवज्ञा सही भावना से, खुले तौर पर, प्रेम से सजा भुगतने की तैयारी के साथ की जाती है, तो वो कानून का अपमान नहीं बल्कि उसके सबसे ऊंचे आदर्शों का सम्मान होती है। एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि और सबसे व्यावहारिक यूनिवर्सल सबक ये है कि समाज को बदलने के लिए सक्रिय भागीदारी जरूरी है। चुप रहना, निष्क्रिय रहना, तटस्थ रहना, ये सब असल में यथास्थिति का साथ देना है जो अक्सर अन्यायपूर्ण होती है। सच्ची शांति सिर्फ तनाव का ना होना नहीं है बल्कि न्याय का मौजूद होना है। हमें सकारात्मक शांति के लिए कोशिश करनी चाहिए।
ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने लायक निष्कर्ष हैं। और जैसा आपने पहले भी इशारा किया था और पत्र में भी ये बात उठती है, किंग का ये पत्र आज एक और सवाल हमारे सामने रखता है। आज का युग डिजिटल है,
तस्वीरें, वीडियो पल भर में दुनिया में फैल जाते हैं।
जी,
ऐसे में अच्छे लोगों की चुप्पी का क्या मतलब है? क्या सिर्फ ऑनलाइन गुस्सा दिखा देना, कोई पिटिशन साइन कर देना या हैशटैग चला देना काफी है? या किंग के सिद्धांत आज भी हमसे ये मांग करते हैं कि हम वास्तविक दुनिया में उतरें, अपने शरीर के साथ मौजूद हों, जोखिम उठाएं, व्यक्तिगत कीमत चुकाएं? ये सवाल शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।